ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ನೇ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಸೇವಾ ಕಾ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಖಿಲೋನಾ ದಿಯಾ ಹೈ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಾಯೇ ದಿನ ರಾತ್ ಸೇವಾ ಮೇ ಬಿಜಿ ರಹತಿ ಹೈ, ಔರ್ ಸೇವಾ ಕೆ ನಯೆ ನಯೆ ಸಾಧನ ಭೀ ಸಮಯ ಅನುಸಾರ ನಿಕಲ್ತೆ ರಹತೆ ಹೈ. ತೋ ಆಪ್ ಸಭಿ ನೇ ಅಭಿ ಸೇವಾ ಕಾ ಸಾಧನ ದೇಖಾ, ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಬಾಬಾ ಕಿ ಜೀವನ ಕಹಾನಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಮೇ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ರಖಿ ಗಯಿ. ಔರ್ ಭೀ ಕೈ ಸಾಯನ್ಸ್ ಕೆ ಸಾಧನೋ ನೇ ಸೇವಾ ಕೋ ಬಹುತ್ ಸರಲ್ ಔರ್ ಸುಗಮ ಬನಾಯಾ ಹೈ. ಚಾರೋ ತರಫ ದೇಶ ಔರ್ ವಿದೇಶ ಮೇ ಸಭೀ ಬಾಬಾ ಕೆ ಬಚ್ಚೆ ದಿನ ರಾತ್ ಸೇವಾ ಸೇವಾ ಸೇವಾ, ಸೇವಾ ಕೆ ಬಿನಾ ಚೈನ್ ನಹೀ. ಲೇಕಿನ್ ಸೇವಾ ಸಫಲತಾ ಸಂಪನ್ನ ಹೋ, ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ರಹೆ, ಆಜ ಇಸೀ ವಿಷಯ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಕುಛ ವಿಚಾರ ರಖೂಂಗಾ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಜಿತನಾ ಬಡಾ ಸೇವಾಓ ಕಾ ವಿಸ್ತಾರ ಹೋತಾ ಜಾತಾ, ಉತ್ನಿ ನಯಿ ನಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಸಮಸ್ಯಾಯೇ ಕಹೇ ವಿಘ್ನ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಆತೆ. ಅಗರ್ ಜರಾ ಭೀ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಚೆ ಉಪರ್ ಹೋತಿ ಹೈ ತೋ ಸೇವಾ ಕಿ ಬಜಾಯ ಕೈ ಸ್ಥಾನೋ ಪರ್ ದಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶುರು ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಬಾಬಾ ನೇ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಸಫಲತಾ ಸಂಪನ್ನ ಸೇವಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕುಛ ಮಹಾಮಂತ್ರ ದಿಯೆ ಹೈ, ಔರ್ ವೋ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಗರ್ ಸಭಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿಮಿತ್ತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಹನೆ ಅಥವಾ ಭಾಯಿ ಧ್ಯಾನ ಪರ ರಖತೆ ಹೈ ತೋ ಸೇವಾಓ ಮೇ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಿ ಸಫಲತಾ ಔರ್ ಹಮಾರಿ ಉನ್ನತಿ ಸಮಾಯಿ ಹುಯಿ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಅಗರ್ ಸಚ್ಮುಚ್ ಕೋಯಿ ಸೇವಾಓ ಮೇ ಸಫಲ ಹೋನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಏಕ್ ಹೀ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೈ, ಸಂಗಠನ್ ಕಿ ಏಕತಾ. ಅಗರ್ ಏಕ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ನಿ ಸೇವಾಯೆ ದೇ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ವಿಸ್ತಾರ ಹೋತೆ ಹೋತೆ ಏಕ್ ಹೀ ಶಹರ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಖುಲ್ ಜಾತೆ ಹೈ, ಔರ್ ವೋ ಚಾರೋ ಪಾಂಚೋ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರೋ ಕಿ ಏಕತಾ ಅಗರ್ ನಹೀ ಹೋತಿ, ಕೋಯಿ ಭೀ ಕಾರಣ ಸೆ ಆಪಸಿ ಮನ್ ಮುಟಾವ್ ಯಾ ಸೇವಾಓ ಮೇ ರೇಸ್ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ ತೇರಾ ಮೇರಾ ಈರ್ಷ್ಯಾ ದ್ವೇಷ ಕೈ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಭಾವನಾಯೇ ಅಗರ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತಿ ಹೈ ತೋ ಏಕ್ ತರಫ ಹಮ್ ಬಾಬಾ ಕಿ ಸೇವಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬನ್ತೆ ಔರ್ ದೂಸರಿ ತರಫ ಕೈ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ವಿಘ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ. ಬಾಬಾ ಕೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಜಿನ್ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಬಾಬಾ ಬಸ್ತಾ ಹೈ, ಜಿನ್ಕಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೈ ಕಿ ಹಮೇ ಸೇವಾ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಬಾಬಾ ಕೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ವೋ ಕಹೀ ನ ಕಹೀ ಅಪನೆ ರಾಸ್ತೆ ಸೆ ಭಟಕ್ ಜಾತೆ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಸಬ್ಸೆ ಜರೂರಿ ಹೈ ಸೇವಾಓ ಮೇ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೆ ವಿಚಾರೋ ಕಿ ಏಕತಾ. ವಿಸ್ತಾರ ತೋ ಹೋನಾ ಹೀ ಹೈ, ಬಾಬಾ ನೇ ಉಸ್ಕಾ ತೋ ವರದಾನ್ ದಿಯಾ ಹೈ ಕಿ ಜಿತನೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಖೋಲೆಂಗೆ ಉತನೆ ಕಮ್ ಪಡೆಂಗೆ. ಏಕ ದಿನ ಆಯೇಗಾ ಜೋ ಆಪ್ಕೆ ಗಲಿ ಗಲಿ ಮೇ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾ ಉಪ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲಾಯೆ ಖುಲ್ತಿ ಜಾಯೆಂಗಿ. ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಹಮಾರೇ ಅಂದರ್ ಮತಭೇದ ಔರ್ ಮನಭೇದ ನ ಹೋ, ಉಸ್ ಪರ್ ಧ್ಯಾನ ದೇನೆ ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಹೈ. ನಹೀ ತೋ ಲೋಗ್ ಭೀ ಯಹಿ ನೋಟ್ ಕರ್ನೆ ಲಗತೆ ಹೈ ಕಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಭೀ ಕ್ಯಾ ಐಸಿ ಕೋಯಿ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಲೋಗೋ ಕಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹೈ. ಹಮ್ ಸಬ್ ಬಾಬಾ ಕೆ ಬಚ್ಚೆ, ಏಕ್ ಮತ್ ಏಕ್ ಧರ್ಮ ಏಕ್ ರಾಜ್ಯ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹೈ. इसलिए हर एक को इस बात पर विशेष अंडरलाइन देना है, कुछ भी हो बाबा ने हम सबको निमित्त और निर्माण रहना सिखाया है। जहाँ निमित्त भाव है कि हम सब बाबा की बेहद सेवा के निमित्त हैं, कराने वाला बाबा करा रहा है, वहाँ अपने आप को बहुत न्यारा और प्यारा रख करके सेवा कर सकते हैं। उसमें जरा भी अहम भाव नहीं आता, मैंने किया या इसने किया। जहाँ वो निर्माणता आ जाती है आपस में, वहाँ पर टकराव की स्थितियाँ नहीं बनती। और जहाँ निर्माणता की कमी दिखाई देती है, थोड़ा भी अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का, किसी भी प्रकार का अहम अगर टकरा गया तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको सिखाया है, बच्चे झुकना सीखो, मरना सीखो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे के साथ बहुत हल्के होकर के, लाइट होकर के मिलो जुलो, आपस में मीठी मीठी रूह रिहान करो। तो सेवा में सफलता के लिए या सफलता संपन्न सेवा के लिए सबसे पहली आवश्यकता है निमित्त भाव और निर्माण भावना। जरा भी मैं पन्ना है कि मेरी सेवा है, मैं ही करूं, मेरी एरिया, कई प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम्स स्थितियों को बनने नहीं देती हैं। कहीं न कहीं वो अपने लिए ही विघ्न रूप बन जाती, दूसरों के टेंशन को दूर करने वाले खुद ही टेंशन में आ जाते। कई बार दूसरों को योग सिखाते, मन को एकाग्र करने की बात सुनाते और खुद के ही मन में एकाग्रता नहीं होती, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता। वो बहुत बड़ा हमारे इस मार्ग के अंदर विघ्न है, क्योंकि बाबा चाहता है कि समय प्रमाण बच्चे कुछ भी अचानक हो, अचानक के पेपर तो आते ही हैं और भी आएंगे, लेकिन एक सेकंड में संकल्पों को ब्रेक दिया जा सके उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और जिसका इस बात पर अभ्यास है, बहुत अच्छी सेवाएं करते हुए भी अपनी स्थिति पर बहुत अटेंशन रखते हैं, पहरा देते हैं कि हमारी स्थिति कुछ भी हो जाए, कैसी भी बातें हों, डगमग न हो, हलचल में ना आए, तो उसके लिए एक स्लोगन है कि हम विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माओं को पहले स्व परिवर्तन करना है। कुछ भी बदलना पड़े, अपने आप को परिवर्तन करना पड़े, बाबा हम बच्चों को सिखाता है कि बच्चे सहन करना और समाना सीख लो। तो सहन करना और समाना जब आ जाता है, भावनाओं के अंदर अपने आप एक दूसरे के प्रति प्यार उमड़ता है। प्रेम से बाबा हम सबको एक बहुत सुंदर सेवा की सफलता की युक्ति बताते हैं। बच्चे वाचा करने का तो बहुत अच्छा, वाचा द्वारा ज्ञान सुनाने का, कोर्स कराने का बहुत अच्छा अभ्यास है, लेकिन वाचा के साथ साथ मनसा बहुत अच्छी और शक्तिशाली चाहिए। जहाँ वाचा और मनसा का कंबाइंड स्वरूप है, मनसा बहुत निस्वार्थ निर्दोष है, शक्तिशाली है, वहाँ वाचा का प्रभाव अपने आप पड़ता है। अगर हमारी आंतरिक स्थितियाँ अच्छी हैं, कथनी और करनी में हमारे समानता है, तो हमारी वाणी का प्रभाव पड़ता है, अपने आप लोग सुनना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा संतुलन वाचा सेवा का तो बहुत अच्छा शौक है और सब कर रहे हैं, लेकिन वाचा के साथ साथ मन शक्तिशाली है, मनसा बहुत शुद्ध है, पवित्र है, निस्वार्थ है, तो उस मनसा का प्रभाव वायुमंडल को परिवर्तन करने में उसकी धरणी को तैयार करने में बहुत मदद करता है। इसलिए वाचा के साथ साथ इस बात को हमें अंडरलाइन करना है, मन बहुत खुशनुमा खुश मिजाज हो। मन की स्थिति अच्छी है तो अपने आप हमारी वाणी के द्वारा निकलने वाले शब्द लोगों को बाबा की ओर आकर्षित करते हैं। और इसके साथ साथ सेवा के सफलता के लिए रूहानियत हमारे व्यवहारिक जीवन में दिखाई देनी चाहिए। अगर जरा भी जिस्मानी लोगों की तरह किसी भी प्रकार का बाह्य आकर्षण है, खिंचाव है, साधन और वैभवों के पीछे हमारी बुद्धि जाती है, तो सेवा स्थान का वातावरण आश्रम की बजाय वो गृहस्थी का लगने लगता है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को, सेवा स्थान के सेवाधारियों को विशेष ध्यान खिंचवाता कि रूहानियत का बहुत अच्छा वातावरण बनाओ, जिसके अंदर जरा भी कोई जिस्मानी आकर्षण न हो। और उसके साथ साथ अगर अलौकिकता है, लौकिकता नहीं दिखाई देती, न्यारापन और प्यारापन है, सबके हैं और किसी के भी नहीं है। अगर कहीं पर भी कोई एक व्यक्ति विशेष का प्रभाव रहता है तो वहां पर कई प्रकार के विघ्न क्रिएट होते हैं। भले समय पर कोई साथ देता है, मदद देता है, अच्छा सहयोग देता है, लेकिन अगर निमित्त आत्माओं का ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता है तो दूसरी आत्माएं उस बात को सहन नहीं कर पाती, समा नहीं पाती और वहां पर विघ्न खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमेशा इस बात को अंडरलाइन करना है, किसी एक विशेष आत्मा को विशेष चांस देना और दूसरी आत्माओं को किनारे करके रखना, वहां पर ही सेवाओं में विघ्न खड़े होते हैं। मैं समझता हूं आप सब इस बात को अंडरलाइन करते होंगे, जानते होंगे कि हमारे सेवा स्थानों पर अगर कोई भी इस प्रकार का स्थूल वातावरण है, लौकिकता है, सबके साथ समान व्यवहार नहीं है, तो वहां पर सेवाओं में सफलता नहीं होती। भले हमारा सेवाओं का विस्तार हो जाए लेकिन संतुष्टता नहीं दिखाई देती। इसलिए संगठन को एक मत बना करके रखना और सबको समान रूप से सेवाओं के चांस देना, अधिकार देना, सबको आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखना, कोई व्यक्ति विशेष ही मेरे को अच्छा है, वही से नहीं सहयोगी है, वहां पर लगाव और झुकाव की बदबू शुरू हो जाती है। इसलिए इस बात को अंडरलाइन अगर करेंगे तो सेवाओं में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। दादी जी ने हम सबको एक बात सिखाई, हमारा यज्ञ जो इतना विस्तार को पाया, इतनी सेवाएं जो वृद्धि को पाई, उसके पीछे एक बहुत सूक्ष्म बहुत गहरा राज मैंने नोट किया है। और वो गहरा राज जो दिखाई दिया, समझ में आता है, वो दादियों की बड़ी दिल, बड़ी विशाल दिल और अंदर से त्याग भावना, हमेशा देने की भावना, किसी से कुछ भी लेने की भावना नहीं रखी, और बड़ी दिल से आने वालों की प्यार से सेवा की, खातरी की, हर प्रकार से पालना दी। मैं तो दादियों के समीप रह करके देखता हूँ कि कभी भी उनसे रिटर्न की अपेक्षा नहीं रखती कि मैंने इतना किया, मैं इसको इतना दे रही हूँ तो इसको भी कुछ करना चाहिए। लेकिन एक अंदर की जो उनकी एक निस्वार्थ सेवा भावना है, देने की भावना है, आगे बढ़ाने की भावना है, बड़ी दिल है, विशाल दिल है, उसके कारण सेवाओं में बहुत सफलता हुई है, हो रही है और उसके कारण ही इतना हम विस्तार देख रहे हैं। साथ साथ हम सब बाबा के बच्चे जितना आपस में एक दूसरे को सम्मान देते हैं, समझ के चलते हैं, मिल करके चलते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत समीप व्यवहार रखते हैं, उतना सेवाएं सफल होती हैं। लेकिन चलते चलते स्थितियां जो नीचे ऊपर हो रही हैं, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय है, हम आप सब जानते हैं, जो भी हमने इस चक्र के अंदर आत्माओं के साथ पार्ट बजाते बजाते हिसाब किताब बनाए हैं, उनको इस अंतिम जन्म में किसी न किसी रूप में चुक्तु भी करना है। इसलिए निर्विघ्न स्थिति रहे, उन परिस्थितियों में हम हिल न जाएं, हलचल में न आ जाएं, डगमग न हो जाएं, बाबा से हमारा संबंध न टूट जाए, उसके लिए मैं आपके आगे कुछ बातें रखता हूं, अंडरलाइन करना, क्योंकि समय हम सबको इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आगे चल करके और भी नए नए प्रकार के विघ्न आएंगे, जिन विघ्नों को आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे नए नए हिसाब किताब, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी। उसके लिए सबसे पहली बात बाबा जो हम सबको अंडरलाइन कराता है वो है नॉलेज फुल स्थिति। वैसे भी आपने देखा होगा श्री गणेश को विद्यापति विघ्न विनाशक कहा जाता है, और उस विघ्न विनाशक की नॉलेज फुल स्थिति आने वाले विघ्नों को दूर से ही भांप लेती है, परख लेती है। हम सब बाबा के बच्चे, जिनको बाबा इतना नॉलेज फुल अपने समान बना रहा है, उसके अंदर कभी भी कोई भी दृश्य को देख करके क्यों, क्या, कैसे मन में प्रश्नों की उलझन नहीं उठनी चाहिए। नॉलेजफुल आत्माएं कभी प्रश्नों में उलझती नहीं है, उसमें पार होने के लिए कुछ न कुछ उनकी बुद्धि में टचिंग आती है और उस टचिंग के आधार से अपने आप को सेफ कर लेती हैं। इसलिए जो विद्यापति का, श्री गणेश का आकार बनाया गया है, उसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। आप देखेंगे कि श्री गणेश के सामने मुख पर सूंड का प्रतिबिंब, सूंड लगाई गई है, और वो है परखने की बहुत बड़ी शक्ति। दूर से ही वो सूंघ कर परख लेता है कि क्या होने वाला है, और ऐसी कोई भी बात है तो कहते हैं उसका पेट बड़ा है, पचा लेता है, समा लेता है, वर्णन चिंतन नहीं करता है। कान भी बड़े बड़े हैं, कोई भी बात आती है तो ऐसे कानों से भी दूर पका देता है, पंखे का काम करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर उसके कान में चीटी चली गई तो बेहोश भी कर देता है। तो ये भी बहुत ध्यान रखना है कि बहुत सारी बातें, जब संगठन बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं, तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कई प्रकार की ऐसी आपसी संस्कारों की उत्पत्ति से एक दूसरे के कानों में कोई न कोई व्यर्थ और नेगेटिव बात डालने का प्रयास करते हैं। और अगर वो कान के अंदर आपने ले ली, वो चली गई अंदर बात, तो स्थिति कभी भी निर्विघ्न नहीं रह सकती। अगर निर्विघ्न स्थिति बनानी है तो चींटी को पैर के नीचे कुचलना है, उसकी परवाह नहीं करनी है, उसको सुन करके अपने माथे को गर्म नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होते हैं, उसका एक कारण है, बाबा बड़े रमणीकता से सुनाता है कि कईयों की आदत होती है इधर की बात उधर सुनाने की, जिसको मुरली में एक शब्द आता है, धूती पने की आदत, मंत्रा वाली, ईर्ष्या वाली आदत। अगर कोई से भी थोड़ी से भी ईर्ष्या होती है, कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाता, तो एक रमणीक बात सुनाता हूँ बाबा की मुरली की। वैसे बहुत ध्यान जाता है बाबा की मुरली पर, लेकिन कभी कभी मैं कहता हूँ ब्राह्मणों के अंदर इस पर चिंतन चलना चाहिए। 7-8 दिन पहले मुरली में आया कि कई मेरे बच्चे अभी भी केकड़े के समान हैं, आया था ना केकड़ा। और जब ऐसा शब्द आता है तो लोग कहते हैं बाबा भी ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। हमसे प्रश्न पूछते हैं क्यों बाबा ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया, तो मैं इसका अर्थ सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं केकड़े के 8 टांगे होती हैं। बाबा जिस रास्ते पर चलाना चाहता है, अगर वो बच्चा उस रास्ते पर नहीं चल रहा है, एक टांग इधर एक टांग इधर, कभी इधर जाता कभी इधर जाता, मन से बुद्धि से भटकता रहता है, श्रीमत के मार्ग पर नहीं चलता है, तो बाबा उसको कह देता है तो केकड़ा है। दूसरी बात केकड़े के लिए कहते हैं कि एक बार एक प्रदर्शनी लगाई गई, हर देश के केकड़े मंगाए गए, तो सब देशों वाले अपने अपने देश के केकड़े लेकर के जब पहुंचे तो सब ने उनको बहुत अच्छी पैकिंग की हुई थी, डब्बों में बंद करके ले आए। लेकिन भारत का एक भाई लेके गया तो उसने उस डब्बे को खुला रखा, तो बोला अरे भाई इतनी दूर से तुम लेके आया है, सागर से क्रॉस करके आया है, ये केकड़े तो पानी को देख के कूद जाते। बोला नहीं, ये तो इंडिया के केकड़े हैं। बोला इसकी क्या विशेषता है? बोला इसकी विशेषता ये है कि अगर एक ऊपर चढ़ेगा तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच लेगा। तो यहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई अपनी आध्यात्मिक उन्नति में, अपने मार्ग में कोई आगे बढ़ रहा है, कोई उन्नति हो रही है, कोई की कहीं महिमा हो गई, कोई की कोई प्रशंसा कर दी, स्टेज पर ले आए, तो वो केकड़े वाली बुद्धि वाले उसको गिराने के लिए उसके ऊपर कितने कलंक लगा देंगे, उसके नाम रूप पर लगा देंगे, उसको कहीं ना कहीं भटका देंगे। इसलिए बाबा कहता बच्चे इस आदत को त्याग दो। बाबा के दरबार में आके अगर कोई भी ऐसी आदत हो तो यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाना कि बाबा मैं तो आपके ही मार्ग पर चलने वाला, सीधे रास्ते पर चलने वाला हूँ, इधर इधर चलने वाला केकड़ा नहीं हूँ। ठीक है, तो बाबा की ऐसी ऐसी मीठी शिक्षाएं जब हम सुनते हैं तो जरूर आप सबका चिंतन चलता होगा कि बाबा हमको क्या बनाना चाहता है। देवता बना, कहता मैं केकड़ों को देवता बनाऊंगा। तो देखो कि कोई भी ऐसी आदत जो हमारे मार्ग में विघ्न रूप बनती है, क्या मेरे अंदर सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है? मैंने अपने ज्ञान और योग के बल से अपने आप को इतना समर्थ इतना शक्तिशाली बना लिया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का विघ्न आ जाए। वर्तमान समय तो आने की रास्ते खुले हुए हैं विघ्नों के, किसी के आगे शरीर का आ जाता, किसी के आगे संबंध का आ जाता, किसी के आगे धन का आर्थिक रूप में आ रहा है, किसी के आगे प्रकृति का तूफान प्रकृति के रूप में आ रहा है, किसी के आगे भटकती हुई आत्माओं के रूप में आ रहा है, कहीं संस्कारों के स्वभावों के टकराव के रूप में आ रहा है। बहुत सारे विघ्न भिन्न भिन्न रूप से नए नए रूप में आते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने योग बल जमा करके अपने आप को समर्थ और शक्तिशाली बनाया है वो कोई चीज की परवाह नहीं करते। उनके लिए तो ऐसा है जैसे पहाड़ नहीं है लेकिन एक छोटा सा रुई का टुकड़ा है। रुई राई से भी बाबा कहता रुई हल्की होती, ऐसे उड़ा देते हैं। इतना ज्ञान और योग की शक्ति है जो एक सेकंड में उसको हटा करके फिर अपनी मंजिल को पकड़ लेते हैं। तो हम सब सर्व शक्तियों से संपन्न बनने के लिए तपस्या करते हैं, योग करते हैं, और योग कर रहे हैं फिर विघ्न आ गया, क्या करूं कैसे करूं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, घबरा जाए मूंज जाए नींद फिट जाए, तो माना वो विघ्नों को सामना करने की शक्ति नहीं है उस आत्मा के पास। और वो शक्ति तब आती है जब हमारे पास परमात्म दुआओं का स्टॉक है। सब बाबा के बच्चों को एक बात बहुत ध्यान रखनी है, परिवार की दुआएं तो साथ देती ही है, मदद करती ही है, लेकिन संगम युग पर हम सबको ये बहुत ऊंचा भाग्य है कि हमें भगवान की दुआएं मिल रही हैं। हम परमात्म दुआओं की अधिकारी आत्माएं हैं, लेकिन उनको ही दुआएं मिलती जो बहुत सच्चे सपूत आज्ञाकारी आजादारी कहते हैं सच्चे साफ सादे ईमानदार हैं। बाबा की दिल से दुआएं मिलती, बहुत सपूत बच्चा है, बहुत आज्ञाकारी बच्चा है, कोई ऊपर से दुआएं ऐसे नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत विशेष आत्मा है। ऐसी बाबा की जो शुभ आशाएं हैं, जो शुभ हमारे प्रति आशीर्वाद के शब्द हैं, वही दुआओं का काम करते हैं। और कोई छोटी मोटी बातें आती हैं वो ऐसे पार हो जाती, कोई बड़ी बात ही नहीं। इस ब्राह्मण परिवार में विघ्न जीत स्थिति का अनुभव करने के लिए, निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करने के लिए हर एक सवेरे सवेरे बाबा की बहुत बढ़िया दुआओं के हाथ का अनुभव करो। बाबा, आपने मेरे सिर पर अपनी दुआओं का हाथ रखा है, क्या करेगी माया, क्या करेंगे विघ्न, क्या कोई कर सकता है जब बाबा की दुआओं का हाथ है। इन उनके ऊपर है जो बाबा के सपूत बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, ईमानदार बच्चे हैं, सच्चे हैं, साफ हैं। बाबा की दुआओं का उन पर हाथ है, उनको कोई विघ्न उनकी स्थिति को बिगाड़ नहीं सकता है। तो ध्यान देना, दुआओं का हाथ सदा बाबा का हमारे मस्तिष्क पर रहना चाहिए। और चौथी बात है, हम कोई भी बातों के विस्तार में न जाएं। अगर विस्तार में चले गए तो विस्तार तो जंगल है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, देखो आपकी यादगार के अंदर कहते हैं, अर्जुन को जब कहा गया कि मछली की आंख और आंख के भी उस पर पुतली पर तीर मारना है तब आपको ये द्रौपदी मिलेगी, तो कहते हैं अर्जुन के पूछा गया तुमको क्या दिखाई देता है, तो बोला मुझे वही दिखाई देती और कुछ नहीं दिखाई देता। विस्तार जो था, मछली का विस्तार उसने नहीं देखा, सिर्फ उसका ध्यान, उसका लक्ष्य अपनी गोल की तरफ था। हम सबको भी बाबा कहता है बहुत सारी बातें हैं विस्तार की, होंगी दिखाई देंगी, लेकिन उनको देखते हुए भी नहीं देखना, लक्ष्य की ओर देखो। हमें अगर देवता बनना है, इस ब्राह्मण जीवन में फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, भविष्य पद है देवपद, संगम युग पर ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली आत्माओं को कोई भी प्रकार का तेरे मेरे का बोझ नहीं लेना है, कोई भी विस्तारों में नहीं जाना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने किया उसने किया, भले कोई कुछ भी करे, मुझे तो बाबा ने लक्ष्य दिया है बच्चे तुम्हें डबल लाइट फरिश्ता बन करके रहना है। अगर डबल लाइट फरिश्ता ड्रेस आप रोज एक बार पहन लो, बड़ी चमकीली ड्रेस है, और वो ड्रेस उन्हीं ब्राह्मण बच्चों को मिलती है, अंडरलाइन कर लेना, जिन्हों के चारों तरफ बहुत शुद्ध संकल्पों का ओरा है, कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव कुछ भी दिखाई दे सुनाई दे उस पर ध्यान न दे करके, जो आत्माएं जो ब्राह्मण बच्चे सब बाबा बैठा है, करण करावनहार बाबा है, उसका कार्य है मुझे अपने आप को बहुत हल्का रखना है, बन जाएगी डबल लाइट स्टेज। और जो डबल लाइट स्टेज में रहते हैं वो सहज बाबा के साथ कंबाइंड हो सकते हैं, ऐसे नहीं कंबाइंड होंगे। बाबा भले हमको कह देता है बच्चे तुम कंबाइंड रहो, और हम समझते हैं ये बार बार याद करते हैं हम तो बाबा के साथ कंबाइंड हैं, लेकिन एक बार रमणीक मुरली बाबा की चली थी कि बच्चे अगर जोड़ी भी होती ना तो समान अच्छी लगती है, एक मिट्टी वाली ड्रेस में हो, एक बहुत सुंदर लाइट की चमकीली ड्रेस में हो, वो जोड़ी कैसी होगी, एक बहुत बुद्धि से सोच सोच करके एक भारी हो गया मोटा हो गया और एक एकदम पतला है, वो जोड़ी कैसी होगी। आप ध्यान देना इस बात को, अच्छी जोड़ी तो वो है जो समान हो, जैसे बाबा है। तो जैसे बाबा सदा लाइट की ड्रेस में रहता है, हल्का रहता है, ऐसे ही हम बच्चे भी जो कुछ है सब जवाबदारियां बाबा को दे करके बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों में रमण कहने की आदत डालें, एक बहुत सुंदर लाइट का ओरा बन जाता और वो ओरा बाबा के साथ, बाबा की लाइट के साथ कंबाइंड हो जाता है। और जब वो कंबाइंड है तो अगर कोई छोटी मोटी कमी है, कमजोरी है, संस्कार है, तो जिसका साथी सर्वशक्तिमान है उसके आगे विघ्न क्या है, बातें क्या है, अपने आप पार हो जाती। तो इसलिए बाबा को साथी बना करके उसके साथ कंबाइंड रह करके और हम सबको विघ्न जीत विघ्न विनाशक बन करके दिखाना है। एक बात और कहता हूं, लगन की अग्नि को प्रज्वलित रखो। कहते हैं जहां लगन है वहां विघ्न नहीं रहते। अगर बार बार किसी के जीवन में कोई विघ्न आ रहे हैं, छोटे मोटे किसी न किसी रूप में उलझा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो अपने लगन को चेक करो। लगन माना बहुत जिगरी प्यार। और जिसका बाबा से, एक बाबा से सच्चे दिल का प्यार है और उस प्यार में समाना सीखता है, कोई भी उसको बांध नहीं सकता, कोई विघ्न नहीं डाल सकता, कोई रुकावट उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि लगन अग्नि का काम करती है और अग्नि में विघ्न भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसलिए लगन को बढ़ाओ। अगर लगन बाबा के साथ लगी हुई है, बातें आएंगी, अपने आप कहेंगे ये तो बहुत छोटी बात है। बाबा कहता बच्चे, कई मेरे बच्चों की एक आदत है, सोच सोच करके उस विघ्न को बहुत बड़ा रूप बना देते, सोचने की इतनी आदत है, और कई हैं डोंट केयर, आई है बात चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, कोई तिल को तार नहीं बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा नहीं बनाना। बाबा की शक्ति को साथ रख करके, बाबा के प्यार की अग्नि से, लगन की अग्नि से उस विघ्न को एकदम बिंदी लगा दो, समाप्त कर दो, समाप्त हो जाएगा। अगर सोचोगे और दूसरों के आगे वर्णन करोगे तो वही आपके आगे कभी कभी पहाड़ बन करके आ जाएगा। इसलिए अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। अगर है भी, मान लो कोई ऐसा संस्कारों का विघ्न है, स्वभावों का विघ्न है, भटकती हुई आत्माओं का विघ्न है, कोई परवश आत्माएं हमारे साथ हैं, तो ऐसी आत्माओं के लिए बाबा ने हम बहुत बहुत अच्छी हम बच्चों को विधि बताई है। बच्चे कुछ समय मनसा सेवा करो, योग बल को प्रयोग करो, सिर्फ योग जमा नहीं करो, सिर्फ योग लगाओ नहीं, लगाने वाले योगी नहीं बनो, लेकिन योग की शक्तियों को एकाग्र हो करके, पहले बाबा की शक्ति तो खुद पर आए तब तो हम प्रयोग करेंगे, खुद ही नहीं, खुद पर ही नहीं ले रहे हैं तो प्रयोग कैसे करेंगे। और प्रयोग करने की बड़ी सरल विधि बाबा ने सुनाई है, जैसे बच्चे साफ कांच के ऊपर अगर सूर्य की किरणें एकाग्र होती और उस कांच के द्वारा रिफ्लेक्ट होती हैं, तो जिधर वो एकाग्र होकर के रिफ्लेक्ट होकर के पड़ती हैं वहां अग्नि पैदा कर देती। सूर्य ऐसे डायरेक्ट कहीं पर अग्नि नहीं पैदा करता, लेकिन अगर वो एकाग्र कांच के थ्रू हो गया तो वहां पर अग्नि पैदा कर देगा। ऐसे ही अगर कोई भी रुकावटें हैं, कोई भी विघ्न है, कोई भी कमजोर संस्कार है, कोई भी पुरानी आदतें हैं, उनको अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो बहुत सुंदर विधि है। पहले तो अपने इस मन बुद्धि के कांच को बहुत साफ कर लो, बहुत शुद्ध बनाओ, कोई के प्रति कोई बातें नहीं, इसने ये किया, उसने वो किया, कोई ने कुछ भी किया, मैं अपने इस बुद्धि के कांच को मैला नहीं करूंगा, इसमें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातों को नहीं इकट्ठा करूंगा, किचड़े को इकट्ठा नहीं करूंगा। दादी जी, गुलजार दादी हमें बहुत रमणीकता से कहती हैं, अरे सब लोग दिल में अपने बाबा को बिठा लो, दिल में दिलाराम को बिठा लो, लेकिन दिल में दिलाराम कब बैठेगा, अगर दिल के अंदर किचड़ा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, व्यर्थ बातें भरी हुई है, तो वो आएगा आपके पास, बैठेगा करके। आपको भी कोई गंदे स्थान पर बिठाए, बैठेंगे, कहेंगे यहाँ तो बदबू है, यहाँ तो ठीक नहीं है, यहाँ तो अच्छा नहीं लगता। बाबा को बिठाना है इस दिल में, तो इसलिए अगर उसकी किरणों को भी अनुभव करना है तो बहुत शुद्धता और एकाग्रता की जरूरत है। अगर मन बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, स्वच्छ है, निर्मल है, तो बाबा की शक्तियां आएंगी और वो एकाग्र हो गई, स्थिर हो गई, तो आप प्रयोग कर सकते, कहीं भी प्रयोग कर दो, अपने संस्कारों पर करो, शरीर की बीमारियों पर करो, कोई भी प्रकार का विघ्न है, कोई आपके मार्ग में रुकावट डालता है, आपकी स्थिति को बनाने में कोई बहुत परेशान करता, बनने नहीं दे रहा है, कुछ समय मन की एकाग्रता के आधार से बाबा की किरणें को लेकर के सकाश दे दो, बस कुछ दिन प्रयोग करो। कुछ होते हैं कड़े हिसाब किताब, टाइम लग सकता है, लेकिन छोड़ो नहीं, ये विधि है, यथार्थ विधि, बाबा कहता है हे मेरे बच्चे, तुम सिद्धि स्वरूप बच्चे हो, लेकिन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए विधि है, ये रिद्धि सिद्धि नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, विधि से सिद्धि है। अगर विधि यथार्थ है और यथार्थ विधि आप सब रोज बाबा की मुरली के अंदर सुनते हो, यथार्थ विधि ये है कुछ सेकंड के लिए इस देह से डिटैच हो जाओ, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, और उस आत्मिक स्वरूप में लाइट माइट स्वरूप में स्थित होते ही जब बाबा की किरणें आएंगी तो कोई ना कोई सफलता आपको दिखाई देगी, आप अनुभव करेंगे कि वो सिद्धियां अपने आप सामने आ रही हैं, संकल्प भी सिद्ध होंगे, बोल भी सिद्ध होंगे, कर्म भी सिद्ध होने लगेंगे, यदि विधि यथार्थ है तो। इसलिए विधि को बहुत अंडरलाइन करना, बिना विधि के सिद्धि नहीं, सेवाओं में सफलता का आधार है विधि पूर्वक चलना, और जो ब्राह्मण आत्माएं विधि को अंडरलाइन करती हैं, हर बात के लिए विधि है, भोजन बनाते हो, भोग लगाते हो, सेवा पड़ जाते हो, अगर उसकी लिस्ट बताऊंगा तो पूरी रात निकल जाएगी, बहुत विधियां बाबा ने बताई हैं। आप मुरलियों की अच्छी स्टडी करो, मुरलियों के अंदर हर बात की सिद्धि कैसे मिलेगी उसकी विधि है, और बाबा ने कोई भी बात को छोड़ा नहीं है। कोई कहे ये बात कैसे करूं, ये बात करूं, प्रश्नों का तो बहुत बड़ा जाल है, लेकिन हर प्रश्न का, हर समस्या का समाधान है, अगर समस्या है तो समाधान है, अगर प्रश्न उठ रहे हैं तो उसका उत्तर है, और वो उत्तर व्यक्तियों से लेंगे तो मुन जाएंगे, हमारे विचार अपने होंगे, हमारे अनुभव अपने होंगे, दूसरे से मिलकर के वही बात पूछेंगे, उसके विचार अपने होंगे, उसका अनुभव अपना होगा, और आप कहेंगे ये क्या, एक ही प्रश्न हमने 10 लोगों से पूछा, 10 ने उसका अलग अलग उत्तर दे दिया, तो कई आत्माएं इसमें भी उलझ जाती हैं, अब क्या है इसका सही उत्तर, और सही उत्तर मिलता है बाबा की मुरली में, और कहीं उत्तर नहीं है। इसलिए अगर कोई ऐसा प्रश्न मन में आए भी, बाबा को बहुत साक्षी होकर के सामने रखो, बाबा की मुरली उठा लो, उसी दिन की मुरली में उस बात का हल होगा, ये जादू मंत्र है बाबा की मुरली में। किया है अनुभव, ऐसा होता है, ऐसा अनुभव ऐसा होता है कि नहीं होता है, किसको किसको है, हाथ उठाओ, है, अच्छा सब हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो फिर और क्या बताना है, फिर प्रश्न तो कोई है ही नहीं। कोई भी मन में किसी भी प्रकार का छोटा मोटा विघ्न है, कोई भी रुकावट है, बाबा को बहुत प्यार से कहो, बाबा इसका उत्तर बता दो, मैं क्या करूं, और कोई से पूछोगे तो उसका अपना विचार है, उसका अपना विचार है, और उसमें मून जाओगे। इसलिए बाबा की मुरली से बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ो, सीधा कनेक्शन, बिल्कुल क्लीन और क्लियर कनेक्शन, सच्चे दिल से बाबा को, और बाबा आपके प्रश्नों का उत्तर दे दे, मन के अंदर टचिंग आए और आप उसको कैच कर लो। कई बार बाबा कहता है मैं बच्चों को टच तो करता हूं लेकिन कैच ही नहीं करते, मैं क्या करूं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि को कहीं ना कहीं इंगेज रखते हैं। देखना ये बुद्धि किसी भी बातों में इंगेज नहीं करो, सब बातें आएंगी, अति की ओर आएंगी, सब अति होने वाली कलयुग के अंत के पहले, और जब अति सब चीजों में होने हैं तो फिर हम अपनी स्थिति को क्यों बिगाड़ें, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बाबा कहता बच्चे नथिंग न्यू, कोई नई बात थोड़ी हो रही है, ये तो सब होना ही था। इसलिए हलचल में आने की बजाय हर सीन को बहुत साक्षी हो करके, ज्ञानी तू आत्मा बन करके देखो, और बहुत समझदारी से, हर्षित मुख से अपने आने वाले पेपर को, हर एक के आगे अपने अपने ढंग का आता है, हर एक के आगे एक जैसा नहीं आता, उसका हल निकाल लो और हल करके पार हो जाओ। तो बाबा की दुआएं बहुत मदद करती हैं, योग के प्रयोग बहुत अच्छे काम में आते हैं, लेकिन मन की एकाग्रता ही योग के प्रयोग की विधि है। अगर मन ही चंचल है, मन ही भटक रहा है, स्थिर नहीं हो रहा है, बाबा की किरणें नहीं आएंगे, एकाग्र नहीं होंगे, एकाग्र नहीं होंगे तो प्रयोग कैसे करेंगे, लगाते रहो योग, विघ्नों में उलझे रहेंगे। इसलिए विघ्न जीत स्थिति, निर्विघ्न स्थिति का आधार है मन की शुद्धता, मन की एकाग्रता, बाबा की किरणें लो। तो चलो अभी हम सब 3 मिनट के लिए, कोई बीच में उठना नहीं, बहुत मन बुद्धि को एकाग्र करके, और कल का दिन बाबा के आने का दिन है, अंडरलाइन करना, ये बाहरी आवाज नहीं, हलचल वाली आवाज नहीं, बहुत एकाग्र चित्त से बाबा की शक्तियों को अनुभव करके बाबा हमसे क्या चाहता है, कैसा बनाना चाहता है, प्रैक्टिकल अनुभव करके ही जाना।